नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, व्यापार स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भू राजनीतिक संकट के बावजूद भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। इसराइल द्वारा ईरान के महत्वपूर्ण इस्पात, बिजली और परमाणु स्थलों पर हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये हमले अमेरिका द्वारा दी गई विस्तारित समय सीमा के विपरीत हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। लद्दाख के जोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन में कई वाहन फंसने से 7 लोगों की मौत। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण आज से बंगलुरु में शुरू। उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। श्री मोदी ने यह बात कल शाम कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य संघर्ष के समय देश की तैयारियों की समीक्षा करना था। श्री मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। श्री मोदी ने राज्यों से सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की गति तेज करने का आग्रह किया और पाइप वाली प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने को भी कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उत्पन्न वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है और देश ने इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया है। नई दिल्ली में कल शाम निजी मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में पेट्रोलियम भंडार को मजबूत करने और सुरक्षित रखने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों ने आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित की है।
प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम, और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें।
इसराइल द्वारा कल रात ईरान के प्रमुख इस्पात, बिजली और परमाणु संयंत्रों पर हमले तेज करने से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे मौजूदा संघर्ष और भी तेज हो गया है। ईरान ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये हमले राजनयिक प्रयासों को कमजोर करने वाले हैं और वार्ता के लिए दी गई समय सीमा का उल्लंघन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी कि ईरान के दो सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों और संवेदनशील परमाणु संयंत्रों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHYRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी हवाई अड्डा परिसर का निरीक्षण भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। इस हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी है जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत लंबित नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मतदाता राज्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट या ECI नेट ऐप के माध्यम से अपने EPIC नंबर का उपयोग करके सूची में अपने नाम देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया है कि अब तक 37 लाख नामों का निपटारा पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूचियों में शामिल घुसपैठियों के नाम हटाना है। कल शाम नई दिल्ली में निजी मीडिया शिखर सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करना है।
तीन विपक्ष के राज्यों में SIR हो रही, तमिलनाडु में हो गई, दो केरल में हो गई और तीसरा बंगाल में हो रही है। ये दो राज्यों से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही भाई। अगर SIR की प्रक्रिया में ही दोष, जैसे उन्होंने आरोप लगाए ऐसे हम पार्टी होते, इलेक्शन कमीशन हमारे इशारे पर चलता होगा, तो केरल में कोई क्यों कंप्लेंट नहीं आई है? एक ही जगह क्यों कंप्लेंट आ रही है? और एक ही जगह कंप्लेंट आ रही है तो दोष SIR का नहीं है, वो जगह पे जो सत्ता में है उनका है।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों पर इनकी मूल्य श्रृंखला के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए चल रहे कदमों की सराहना की और नार्को आतंकवाद के गठजोड़ से जुड़े खतरों पर भी चर्चा की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आम सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः मजबूत करने के लिए विश्वास को फिर से बनाना जरूरी है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता और यह विश्व व्यापार संगठन की नींव है। श्री गोयल ने यह बात कैमरून में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मंत्रिस्तर के एक सत्र को संबोधित करते हुए कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे से मुलाकात की। श्री चौहान ने किसानों को समर्थन देने और कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। तटीय क्षेत्रों में बेमौसम वर्षा से फसलों को हुए नुकसान का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटरी का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट जोजिला पास पर कई वाहन हिमस्खलन की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद कई एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया और बर्फ हटाने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रसार भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया है। इस समझौते को कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारत मंडपम में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 19वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। बेंगलुरु की टीम कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में इस संस्करण का अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी ईशान किशन करेंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद टीम की कमान संभाली है। समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
धन्यवाद कनक। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती आज के ज्यादातर अखबारों की पहली खबर है। दैनिक भास्कर बड़ा फैसला शीर्षक से लिखता है, न ईंधन महंगा होगा न लॉकडाउन। महंगाई थामने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रूपए की कटौती, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए उत्पाद कर में 10 रूपए की कटौती। नव भारत टाइम्स की हेडलाइन है, यूएस ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले 10 दिन और डाले, ट्रंप बोले तेहरान के अनुरोध पर फैसला, बातचीत अच्छी। पत्र अपने संपादकीय में लिखता है, ट्रंप की दी इस नई मोहलत ने मार्केट में कोई खास उम्मीद नहीं जगाई। जिस दिन उन्होंने नया ऐलान किया उसी दिन अमरीकी मार्केट ने अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी। पत्र लिखता है, युद्ध शुरू होने के एक महीने के बाद अमेरिका इसराइल के लक्ष्य अब अलग अलग दिखने लगे हैं। ट्रंप का समझौते की ओर झुकना घरेलू स्तर पर बढ़ते दबाव का भी नतीजा है। AI से नौकरी के अवसर कम होने की खबरों के बीच राजस्थान पत्रिका ने आपदा नहीं ये अवसर शीर्षक से लिखा है, वैश्विक छटनी की आंधी में भी भारत से हायरिंग बढ़ी, AI को दुश्मन नहीं माना दोस्त, AI की सुनामी पर सवारी कर रहा टेक इंडिया। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज प्रस्तावित उद्घाटन की खबर अखबारों में सचित्र है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, नोएडा को आज मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, अप्रैल के अंत तक हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद। दैनिक जागरण ने लिखा है, 24 साल का इंतजार हुआ समाप्त, लोक सत्य ने हवाई अड्डे की रंगीन तस्वीरें दी हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए से ऐतिहासिक गिरावट पर देशबंधु लिखता है, 95% डॉलर के करीब पहुंचा। राजस्थान पत्रिका ने रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर स्थित भगवान राम की प्रतिमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सूर्यदेव बने पुजारी, रामलला की ललाट पर सजा सूर्य तिलक।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, व्यापार स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भू राजनीतिक संकट के बावजूद भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। इसराइल द्वारा ईरान के महत्वपूर्ण इस्पात, बिजली और परमाणु स्थलों पर हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण आज से बंगलुरु में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।